Shanti. Murli, 21st November 1992. कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो. 21st November 1992. कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो. बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त बच्चों प्रति बोले, आज सर्व खजानों के देने वाले बाबा बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे. खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले. एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं. फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है. कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है. जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है. रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उसके हर कर्म में दिखाई देती है. क्योंकि जहाँ रूहानी फकूर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता. यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते. जैसे रोशनी और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते. तो बाबा कहते हैं, बाबा ने सभी बच्चों को समान रूप से सभी खजाने दिए हैं, फिर भी किसी ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और किसी ने यथाशक्ति जमा किए हैं. तो जिनके पास में खजाने हैं उन्हें रूहानी नशा रहता है, रूहानी फकूर जो कि उनके चेहरे से दिखाई देता है. बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है. और जहाँ फकूर है वहां पर फिक्र नहीं है. जैसे रोशनी और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते उसी तरह रूहानी फकूर रूहानी नशा और फिक्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते. बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते. हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा. किस किस बात में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? हर कर्म में. कौन से? स्व के संबंध, दूसरों के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, यह क्या हो रहा है. ऐसे भी होता है क्या? प्रश्न प्रसन्न चित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि क्या रहता है?
अच्छा.
जो हो रहा है वह
अच्छा
मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है. ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें अकल्याण हो नहीं सकता. ये ड्रामा न्यायकारी है, न्यायपूर्ण है, इसमें कहीं पर भी कोई भी अन्याय नहीं है. ये ड्रामा
सत्य
है, यथार्थ है. इस ड्रामा में कोई कोई पक्षपात नहीं है. इस ड्रामा में कोई अत्याचार नहीं है. जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है. कई आत्माएं दुखी है इसी कारण से, अन्याय नहीं देख सकती, अत्याचार नहीं देख सकती, पक्षपात नहीं देख सकती, असत्य नहीं देख सकती. परंतु यह ड्रामा विविधता पूर्ण है, न्यायकारी है, न्यायपूर्ण है, इसमें अन्याय हो ही नहीं रहा है. जो कुछ हो रहा है आत्मा के कर्मों की गति अनुसार हो रहा है. इसके लिए स्व के संबंध में, सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी प्रश्न नहीं. नो क्वेश्चन. यह ऐसा क्यों, यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, ये सब प्रश्न है. प्रसन्न चितात्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते, करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, कोई आश्चर्य नहीं। नथिंग न्यू, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, हूबहू पुनरावृत्त हो रहा है, पुनः प्रसारण हो रहा है इस ड्रामा का, इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं। और सदा अच्छा ही होना है। अब प्रश्नचित आत्मा क्या, क्यों, ऐसे, वैसे, ये क्या, यह क्यों, ये ऐसे, ये वैसे, इस उलझन से स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। क्या कर देती है बेफिक्र आत्मा? बुराई को भी अच्छाई में, जैसे साइंस ने क्या कर दिया, वेस्ट को भी बेस्ट कर दिया, जैसे खाद क्या कर दिया, स्वयं है गंदी बुरी, परंतु फल फूल और सब्जियां, जैसे बाप के पास तुम आए थे तो कैसे थे, बुरे थे, तो बाप ने सोचा, बाप ने कहा कि ये बुरे है, कर दिया ना, तो तुम जैसे बाप ने तुमको बुरे से अच्छा कर दिया, तो तुम बुरी बात को अच्छा नहीं कर सकते, इतना छोटा काम नहीं कर सकते। तो आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी, अदिव्य को भी दिव्य कर देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी वह गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत, गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना।
ड्रामा में कोई भी गलत, गलत भी राइट है।
क्या उत्तर दिया बाबा ने? कोई बात बहुत बुरी है, कोई बात गलत है, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ गलत तो है, गलत को गलत तो समझना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेगी। किसी में बहुत सारी बुराई है, बहुत बात गलत है, बुरी बात है, उसको समझना ये बुरी है, उसको समझना ये रॉन्ग है, परंतु उसको अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना,
दिल में
किसी भी व्यर्थ को अंदर स्वीकार नहीं करना। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपनी चित्त पर किस किस में धारण नहीं करना है, चित्त में, अपनी बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। तो एक है बुरी बात है, गलत बात है, रॉन्ग बात है, ये समझना, इसमें ये कमजोरी है, ये समझना। एक है उसको अंदर धारण करना, स्वयं में धारण करना, बुद्धि में धारण करना, वृत्ति में धारण करना, वाणी में धारण करना, इसमें अंतर है। समझना पर अंदर धारण नहीं करना। आगे अपने को बचाने के लिए यह कह देते कि यह तो है ही रॉन्ग, रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ेगा ना, लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा रखेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना, या जमा करना ही समझदारी है, यह समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात वो बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि वृत्ति वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? किसी की बुरी बात को यदि धारण कर लिया, ले लिया, तो वृत्ति वाणी बुद्धि स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अगर कोई की बुरी बात चित्त पर है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, कहीं ना कहीं तो वर्णन करेगा, निकलेगा अंदर से किसी न किसी रूप में। बुराई अगर धारण करके अंदर रखी है तो चित्त में, वृत्ति में, बुद्धि में, वाणी में, वाणी से निकलेगा वो। इसके लिए अगर बुराई देखते हो, अगर रॉन्ग देखते हो, अगर गलत देखते हो, उसको समझना और बात है, परंतु अंदर धारण नहीं करना। देखते हुए नहीं देखना,
वो बोलते अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड,
उसको अंदर नहीं लेना, व्यर्थ को देख लिया, क्योंकि व्यर्थ तो दिखेगा। आज ही बाबा ने कहा ये किचड़े की दुनिया है, ये गंदगी की दुनिया है, ये पापात्माओं की दुनिया है, ये रावण की दुनिया है, तो यहाँ क्या अच्छा दिखेगा क्या? ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ तो सब ऐसा ही है। परंतु देखते हुए उसको अंदर स्वीकार नहीं करना, अंदर धारण नहीं करना, वृत्ति में, बुद्धि में, दृष्टि में, वाणी में नहीं आए वो। अगर कर लिया तो आ जाएगा वाणी में, चाहे एक के आगे कर वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का, कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। कौन सा रहस्य? अगर किसी की बुराई वह गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, एक तो धारण कर लिया, फिर वर्णन कर लिया, अभी आगे क्या होगा? यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे जैसे फ्लू की बीमारी, जैसे
पानी में
मच्छर,
मच्छर
पानी को बुलोगी ये होते हैं।
जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल आपके पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, किसने बहुत बुरा किया, गलत किया, गलती की और हमने उसको फैलाया सब जगह यज्ञ में, तो क्या हो जाएगा? जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, बड़ा साक्षी भाव से वर्णन कर रहे हो, लेकिन यह पक्का नियम है क्या? हमने किसी की ग्लानी कर दी तो क्या पक्का नियम है?
हमारी ग्लानी कोई डबल करेगा,
डबल, यहाँ तो 10 गुना भी बोला है, यहाँ पक्का नियम है। अर्थात कर्मों की फिलोसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानी की और कल आपकी कोई दुगुनी ग्लानी करेगा। चाहे कोई गलत है, रॉन्ग है, बुरा है, कैसा भी है, हमने उसकी गलती, बुराई, रॉन्ग चीज को अंदर धारण कर लिया, बुद्धि में, वृत्ति में, चित्त में, और फिर उसका वर्णन कर दिया, चाहे एक के आगे चाहे अनेकों के आगे, और उसके बाद में हमने सोचा कि हम बहुत समझदार है, साक्षी होकर देखा, साक्षी होकर गलती को देखा, परंतु ग्लानी की तो हमारी दुगुनी ग्लानी होगी।
लॉ
ऑफ कर्म, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानी की वहां तक पहुंचते जरूर है। वाइब्रेशंस प्रकंपन फास्ट की फसल है, व्यर्थ की फसल जो है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को पैदा करता है, बहुत फास्ट, तुरंत। अपने एक ग्लानी की होगी और वह आपको ग्लानी सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगी? तो रिजल्ट क्या होगी, क्या रिजल्ट होगी? कर्मों की गुह्य गति क्या हुई, लौट कर कहां आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रहोगे। शुभ भावना है तो जो भी निमित्त है उसको सुना दो। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे, तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। भी ग्लानी हमने नहीं की, ये दूसरी परिस्थिति है, कोई दूसरा ग्लानी कर रहा था कि ये ऐसा ऐसा है, और हमने कहा बरोबर बोला, हमने भी अनुभव किया ऐसा तो है। तो बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया। भक्ति मार्ग में के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। आगे, वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप, छोटे छोटे सूक्ष्म पाप,
कोई कर रहे हमने देखा और कोई पूछा ऐसा किया है क्या, हमने बोल दिया ये भी पाप है। बाबा के भाषा
नहीं समझो उन्होंने, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन हमारा भी
सोचेंगे
नहीं उन्होंने,
और झूठ बोल दे तो हमने देखा नहीं ये पाप नहीं,
फिर झूठ हो
ये छोटे छोटे
कर रहा है।
हमने उसमें हाँ में हाँ मिलाई,
वो इधर से निकाला,
हाँ तो वो नहीं है,
तो वो तो ठीक है ना,
वो तो ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है,
माना इधर से सुना उधर से निकाल, क्योंकि उनको बोलेंगे ना आप तो वो और भी डिस्टर्ब होंगे।
इजी रहने तो, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते, छोटे छोटे पाप है, एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म, वो भी इजी बनने की निशानियां क्या है, वह सदा ऐसे ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, ऐसा समझते हैं। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यह कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है, इसलिए ज्ञान तो बहुत मिला है, रचता रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों के की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हो। कई बच्चों के अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं जितना चाहते है उतना नहीं है, इसका कारण क्या है, ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता। योग लगाने बैठते लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनाने में समय चला जाता है, इसके लिए क्या करना है, जितना ऊंचा बनते उतना तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। आज भी बोला है मुरली में, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसके लिए अटेंशन भी उतना ऊंचा चाहिए, साकार वाणी आज की। तो जितना ऊंचा बनते हो तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। अभी लास्ट, ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, मौज में रहने का अर्थ यह नहीं जो आया वह किया मस्त रहा, यह आजकल के सुख की मौज, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज, सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। एक है अल्पकाल की मौज, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज, एक है सदाकाल की स्थिति से मौज, इसी को मौज नहीं समझना, जो आया वह बोला जो आया वह किया, यह तो मौज में रहते हैं, अल्पकाल की मनमौज नहीं बनो, सदाकाल की रूहानी मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है, मौज में भी रहो और कर्म की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो जैसा चाहते हो वैसा अनुभव करते रहेंगे, समझा, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे बाद में कभी। तो बाबा ने क्या कहा, बाप ने सबको सर्व खजाने दे दिए, आज के मुरली में भी एक वाक्य है, बाप आए हैं तुम बच्चों को सर्व खजाने दिलाने के लिए, माला माल बनाने के लिए। तो बाप ने सर्व को खजाने दिए, किसी ने सर्व खजाने जमा किए, किसी ने यथाशक्ति जमा किए, जिसके पास खजाने जमा है वो रूहानी फकूर में रहेंगे, नशे में रहेंगे, उनकी चेहरे और चलन से हर कर्म में ये नशा दिखाई देगा, कौन सा नशा, बेफिक्र बादशाह का नशा, और जहाँ फिक्र जहाँ फकूर है वहां पर फिक्र नहीं, जैसे जहाँ रोशनी है वहां पर अंधकार नहीं है। और ऐसी आत्माओं की निशानी बेफिक्र आत्माओं की स्वयं के संबंध में, औरों के संबंध में, प्रकृति के संबंध में कोई प्रश्न नहीं। यह क्यों, यह क्या, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब नहीं रहेगा। क्या, क्यों, कैसे, जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा, तो वो उलझन में नहीं रहेंगे। वो दूसरों की बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देंगे, जैसे साइंस के साधन बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देते हैं। यह एक बहुत अच्छा वाक्य था। चाहे बुरी बात हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेंगे और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे। तो कई बच्चे कहते हैं कि बात ही बुरी है, बात ही गलत है, बात ही रॉन्ग है, तो वो क्या कहेंगे? एक तरफ जानना, समझना, पर उसको अंदर धारण नहीं करना, बुद्धि में, चित्त में, वृत्ति में, वाणी में भी नहीं। अगर वाणी में भी धारण किया तो वो वर्णन जरूर करेंगे, चाहे एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो। तो बाबा ने कहा ये बुराई धारण करना इसमें समझदारी है। जो बात गंदी है उसको अंदर धारण कर लिया तो अपनी बुद्धि, वृत्ति, वाणी संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी। जरा भी अगर डिफेक्ट है, दाग है, किचड़ा है तो परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा गुंबज का उदाहरण, जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वापस आता है। हमने किसी की ग्लानी की तो हमारी दुगुनी ग्लानी होगी। जैसे और एक उदाहरण, ये गलत बातें कैसी फैलती है? पुरुषार्थ की बातें जरा कम रीति से फैलती है, गलत बातें, व्यर्थ बातें। बाबा ने कहा है जितना समाचार दिलचस्प उतना उसमें व्यर्थ, जितना जो इंटरेस्टिंग है उतना ही समझ लो वो व्यर्थ है। तो विशेष बीमारी के जर्म्स जैसे होते वैसे ये फैलता है। तो आपकी 10 गुना ग्लानी करेंगी, लौट कर कहा आएगी? आपके पास आएगी। फिर भक्ति मार्ग, फिर और एक उदाहरण दिया कि दूसरे ग्लानी कर रहे, हम तो नहीं कर रहे पर हमने हा में हा मिला दी। भक्ति मार्ग का उदाहरण कि हमने काम तो नहीं किया लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। तो यह हा में हा मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भक्ति बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे क्या कह देते हैं, बड़ा सूक्ष्म रूप से, हल्के रीति से इसको ले लेते, छोटे छोटे सूक्ष्म पाप। क्या कहते हैं, मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। तो बाबा ने कहा कर्म की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे, इसमें इजी नहीं बनना है क्योंकि ये बहुत ऊंची मंजिल है। ऊंचाई जितनी ऊंचाई है तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। बाबा ने आज कहा है अगर कोई ऐसा वैसा कर्म किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर किसी ने कुछ कर्म किया, जेल में गया, हाँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है, मौज में रहना है, पर अल्पकाल का मौज नहीं, सदा काल के मन मौज। अल्पकाल के मन मौज ही नहीं, अल्पकाल का सुख नहीं, अल्पकाल की संबंध संपर्क का मौज नहीं, जो आया वो किया ऐसा नहीं। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनो, फिर कर्मों के खजानों के जमा करने की रिजल्ट बाद में सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिक बेफिक्र बादशाह आत्माओं को सदा, प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को सदा, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को सदा, रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 21 नवंबर 1992। ओम शांति। वो 90 की मुरली है, उसमें व्यर्थ बोल के 500 रुपए, जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक, टॉन्टिंग, तीसरा कौन सा है, 500 रुपए, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर है 90 की मुरली।